आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, आज से देश में नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो गई है। अब 18 के ऊपर किसी भी उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए कोविन ऐप या किसी भी वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में किन चीज़ों को छूट मिली है और क्या चीज़ें अब भी रहेंगी बंद। इसके अलावा यूपी, राजस्थान और पुणे की खबरें भी होंगी आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए एनकाउंटर की खबर, जिसमें 3 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। फिलहाल चलें पहली खबर की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज सुबह एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। पीएम ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है, तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी जोर दिया गया है। देश भर में सोमवार से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो गई है। नई नीति में 18 से 44 उम्र वर्ग के लोग भी सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत होती थी। नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। अभी केंद्र सरकार 45 से नीचे के लोगों को वैक्सीन नहीं लगा रही थी। कोरोना रोधी वैक्सीन राज्य सरकारें और प्राइवेट अस्पताल लगा रहे थे। नई पॉलिसी के तहत केंद्र ने निजी अस्पतालों में वैक्सीन की अधिकतम रेट तय कर दी है। 780 रुपये कोविशील्ड की एक डोज के लिए देने होंगे, जबकि स्पुतनिक के लिए 1145 और कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये से अधिक निजी अस्पताल नहीं ले सकेंगे। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ने के बाद लगातार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है। इस बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में सोमवार से सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब, बार और बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति दे दी है। DDMA ने आज अपने एक आदेश में कहा कि इन जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने का जिम्मा जिला अधिकारियों का होगा। फिलहाल दिल्ली के रिहायशी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। बाजार और मॉल में सभी दुकानें खोलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही है। रेस्टोरेंट 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। अब 50% क्षमता के साथ बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। दिल्ली में पब्लिक पैलेस, बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज गार्ड में शादी करने पर अभी रोक जारी रहेगी। कोर्ट मैरिज या फिर घर पर शादी हो सकेगी, लेकिन यहाँ भी सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं मिलेगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम पूरी तरह बंद रहेंगे। दिल्ली में स्पा और जिम भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर और एंटरटेनमेंट पार्क पर अभी पाबंदियाँ जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले इसी तरह का बयान यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि साल 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम की मुहर लग सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि साल 2017 में हमारे पास कोई चेहरा नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व ने वह चेहरा दिया। इस वजह से साल 2022 में भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि वह चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या फिर जीतने के बाद कोई नया नेता चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी परंपराओं के हिसाब से ही चलती है। पार्टी नेता होने के नाते या बतौर स्वामी प्रसाद मौर्य मैं यह कह सकता हूँ कि यह सब कुछ 2022 में चुनाव के बाद तय होगा। ये भी हो सकता है कि विधायक दल की बैठक में भी चेहरा तय हो जाए। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। राजस्थान के अलवर ज़िले में विश्व हिंदू परिषद के नेता नवल किशोर शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ्तारी हत्या के एक मामले में हुई है। यह वारदात 3 साल पहले रामगढ़ में हुई थी। यहाँ 3 साल पहले 28 साल के नौजवान रकबर उर्फ अकबर की हत्या कथित रूप से पीट पीट कर गोरक्षकों ने कर दी थी। पुलिस ने लावंडी गांव में 20 जुलाई 2018 को ही वारदात के सिलसिले में यह 5वीं गिरफ्तारी की है। इस मामले में शामिल 4 आरोपियों परमजीत सिंह, नरेश शर्मा, विजय कुमार और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विन गौतम ने बताया कि वीएचपी नेता की गिरफ्तारी रामगढ़ पुलिस ने की है। मामले की जांच कर रहे सहायक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमन मीना ने बताया कि नवल किशोर शर्मा की गिरफ्तारी उन्हीं आरोपों के तहत की गई है जिनमें पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नवल किशोर शर्मा को अदालत में पेश कर 10 दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे पुणे में फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोविड-19 के प्रसार की जांच करने के लिए यह कदम उठाया है। वीकेंड्स पर गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक पीएमसी ने रात 10 बजे के बाद बगैर किसी वैध कारण के घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा दी है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि दोबारा लगाई गई पाबंदियां कब तक चलेंगी। शुक्रवार को जारी पीएमसी आयुक्त विक्रम कुमार के आदेश के मुताबिक गैर जरूरी सामान वाले स्टॉल और दुकानें, मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बार और फूड कोर्ट्स वीकेंड्स में बंद रहेंगे। ये पाबंदियां पीएमसी, पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड, किरकी कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रविवार रात को मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के कमांडर समेत 3 आतंकवादी मारे गए हैं। यह सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सोपोर में हुए एनकाउंटर में मारा गया लश्कर का आतंकी मुदसिर पंडित 3 पुलिस वालों, 2 नेताओं और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था। लश्कर के कुल 3 आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। उन्होंने बताया कि 12 जून को उत्तरी कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। 23-24 जून को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आमने सामने होंगे। हालांकि भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तानी एनएसए मोईद यूसुफ के बीच कोई औपचारिक मुलाकात नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की अलग से मुलाकात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। बैठक में रूस और चीन के एनएसए भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मुलाकात के लिए करीब 2.5 घंटे का वक्त शेड्यूल किया गया है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।